کیونکہ اگر بریک نہیں اس کے تھا اور ابھی بھی کرتا ہے وہی ڈائریکٹ ہوگا. خدا جی پوچھیا بکی وزن صاحب مارا کہ بتا رہے تھے تین مہینہ آپ کو علاج تھے اور اس کے بعد ایک اور تھے. ان کے بعد بھی بہت سارے سنتوں کا لابھ ہمیں ہمیں ملتا ہے. کبھی مہاراج جی کا پروفیسر کا سننے کا بڑا سوبھاگیہ ملا. ان کی وشوتا ان کی نشتا ان کے شاستروں کے پتے کی جو دستی بڑے ہدے کے اوپر بڑا پربھاؤ ڈال دے. میں پھر سے بھی کچھ مہاراجی کے چرنوں میں مدد کر کے آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں یہ جو آپ کو بنا پریم پوری اس کے اندر سبھی دھرموں کے لیے ہر ہندو دھرم نے سبھی دھرموں کے لیے پورا آدر آپریٹ رکھا جاتا ہے اور ہر ایک پروگرام کے اندر کیول تین سارا ڈینک رکھتا ہے. تین مارے پہ آپ لوگ کو گرا دیا ہے جو تھا پانچ مندر تھی اور ایک لوگ اس میں تین اور ایک کے اندر انیک پروٹیا کرتی ہے اس میں ایسے ایسے سب پڑھائے اور اس کا پروشن کا درشن کا لابھ ہمیں ملے وہ ہمارے سبھا کی بات ہے. اس سے میں آمنت کرتا ہوں ایسے ایسے جو جو پروگرام آپ کا ہو کبا کر جو بھی کر پڑھائیے اور ان کا لابھ ہم لوگ سماج کو دیجیے کی پرارتھنا ہے. ہری اوم سر.
भागवत का उद्देश्य भागवत का गुण रहस्य क्या है तीसरे समय में कुछ कुछ बदलाया। मैंने भागवत की क्या भागवत का क्या वैशिष्ट्य है और शास्त्रों से वेदों से उपनिषदों से गीता इत्यादि से क्या वैशिष्ट्य है इसके संबंध में हमने बताया। व्यास जी ने महाभारत में गीता रूपी रत्न को दान दिया। वही श्रीमद् भागवत के गीता के प्रवक्ता श्री व्यास जी ने अंत में अपनी अंतिम कृति श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया जगत के सामने। उन्होंने कहा गीता जहां पर समाप्त होती है श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होता है। गीता आधार भूमि है, जब आधार न रहे नींव न रहे पक्षी तो ब्रीडिंग नहीं बन सकती, वो गिर करके चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेसिस कंक्रीट से भी अधिक बेसिस हमारी भारतीय संस्कृति का बेसिस ये गीता है। उस गीता के ऊपर में प्रेम के किसको कहते हैं ये बतलाने की चेष्टा की गई है। मैं संसारिक विषयों में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो भी हमने सुना है और जहां सब कुछ देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि विज्ञान ने बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाई। ऐसी छलांग लगाई सारे जगत को एक मुट्ठी में बांध दिया, जो बहुत दूर के थे बहुत निकट हो गए। सुनते हैं कि ध्वनि से भी तेज चलने वाली बाइक माने इत्यादि मिल गई और समय की गति से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह में एक पृथ्वी के छोर से लेकर दूसरी पृथ्वी के छोर तक उस व्यक्ति को पहुंचा देती है। संचार की ऐसी व्यवस्था भी कई इंग्लैंड में कुछ हो रहा है और कोई वक्ता बोल रहा है, क्रिकेट खेल हो रही है उसके संबंध में लोग बोल रहे हैं और यहां पर घर बैठे चुपचाप सब कुछ देखती है। ऐसे जगत को मानो ऐसा एकत्र करके मुट्ठी में कर दिया, सब लोग एक हो गए। पृथ्वी बहुत छोटी हो गई, विश्व बहुत छोटा आयतन का हो गया, किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका यह पहलू, पहला तो ये देखो किसी का हृदय यदि गड़बड़ हो गया दूसरा हृदय लेकर के प्रत्यार होगा, दिमाग किसी का कर गया दूसरा दिमाग होगा। रसोई घर के एक छोटे कोने से लेकर विज्ञान के बहुत क्षेत्र में इसने बड़ी उन्नति की, कमाल किया, आश्चर्य लगता है। किंतु इसका दूसरा पहलू ये, शरीर की भूख इसने बढ़ाई विज्ञान ने, आत्मा के गुण सारे विनष्ट हो गए। सबसे जो प्यारा चीज जो संपत्ति मनुष्य की थी, जीव जंतु प्राण सबके जो मूल संपत्ति थी वो था प्रेम, वह प्रेम अंतर्जित होने लग गया, लगने कहां उड़ने लगा। यह सब उन्नति हुई, वैभव को बढ़ा, सब कुछ हुआ, किंतु अब पहले जैसा राम और सीता में जैसा प्रेम था, जैसे गोपियों और कृष्ण में प्रेम था, जैसे आज से पहले 50 वर्ष की बात करता हूं जिस समय हम लोगों ने भट छोड़ा उसमें भी देखा पति और पत्नी में अभाव प्रेम, भाई और भाइयों में प्रेम, पिता और पुत्र में प्रीति, पड़ोसों के साथ में प्रीति, किस बड़े जोर से जो छलांग लगाई विज्ञान ने प्रेम को छोड़ दिया और नीचे वो प्रेम टूट गया। कलकत्ते में, बंबई में, दिल्ली में हम लोग जाते हैं देखते हैं लोगों की इतनी भीड़ रास्ते में निकलना रावट मुश्किल है, शरीर से शरीर रगड़ता है और उसमें एक आदमी भी गिर जाए किसी की सहानुभूति नहीं है उसे उठा ले। एक फ्लैट में रहने वाले में एक को घर में आदमी मर रहा है और दूसरे घर में विवाह हो रहा है, कोई सहानुभूति पहचानता नहीं किसी फ्लैट में कौन है। धीरे धीरे प्रेम लुप्त होता है, अभी कुछ कुछ प्रेम देखा जाता है कहीं कहीं, कुछ दिनों के बाद में ये प्रेम भी लुप्त होने वाला है यदि विज्ञान और उन्नति करे। और यदि विज्ञान ने उन्नति करके आत्मा का डिस्कवर किया कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, यदि ये छलांग लगाई और किसी योग्य संतों का संग उनको मिल गया तो फिर से प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकता है। आज स्थिति समस्या प्रॉब्लम इस प्रेम की है। प्रेम बहुत कम देखने में मिलता है। यहां पर पति का बैंक बैलेंस अलग हो, पुत्र का अलग हो, पुत्र वधु का अलग हो, बेटी बेटियों का अलग हो, वहां पर एक दूसरे को विश्वास नहीं, वहां पर प्रेम कहां से आएगा? प्रेम तो वहां रहेगा जब एक तरह से फुटबॉल ग्राउंड में गेंद उठा ली, फर्श के तरफ नहीं, राज्य नहीं, मैदान नहीं तुम्हारा, और फर्श ने वो फिर फुटबॉल दिया राम के तरफ में, भाई नहीं ये राज्य मेरा नहीं तुम्हारा, इससे प्रेम। इसलिए प्रेम की समस्या है। अब 5000 वर्ष पहले, अभी 500 वर्ष पहले चले, जगत में कृष्ण पैदा हुए, चैतन्य महामूर्ति राधा जी का भाव लिया, देखा जाए जगत में किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज सब चीज चल रहा है, प्रेम का अभाव, प्रेम की समस्या है। इसलिए वो जब पूरी जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे हैं, वहां पर भालू, बाघ, सांप, हिरण, हाथी मत वाले सभी एक साथ में महाप्रभु जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और महाप्रभु नाम उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं, और उनके पीछे में बाघ हिरण का मुख्य आता हुआ बड़े प्रेम के साथ में एक साथ में वो भी उच्चारण कर रहा है हरि बोल हरि बोल। उन्होंने जीव मात्र को छोटा बड़ा नहीं समझकर सबको प्रेम दान करने की चर्चा, जगाई बधाई जैसे प्रियकर को भी समस्त धर्म से नहीं, उस व्यक्ति को उसे गले लगाया और वो भी हरि बोल हरि बोल बोलने लग गया, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो भी बोले, आंखों में आंसू सबके भर आए। अभी बेटी ने बड़ा सुंदर एक गान किया, बहुत ही फल देना, माला करते हैं गिन गिन करके और कृष्ण को भूल जाते हैं, मन की माला टूट जाती है, माला टूटी जाती है, ठीक करें यदि कृष्ण नाम कर रहे हैं और आंखों से आंखों की अगर धारा प्रवाहित नहीं होती, हृदय द्रवित नहीं हो जाता, तो समझो कि हमारे बहुत जन्म जन्मों के अभी अपराध हैं, अभी कृष्ण नाम नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु बड़ी ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, उनका जीवन ही प्रेममय है, उनका स्वरूप ही प्रेममय है, उनकी शिक्षाएं प्रेममय है। इसलिए प्रेम की शिक्षा उन्होंने दी, उन्होंने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध ये सब का विचार नहीं किया, हरि का भजा तो अच्छा, हम आत्मा हैं, सच्चे हम भेद की कल्पना करते हैं, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, किंतु देखिए एक ही सबके जीवन में, चाहे पशु पक्षी जीव पतंग गधा घोड़ा सूकर भी हो तीन पतंग भी हो, प्रेम का किसी न किसी रूप में उसमें जरूर कुछ पोटेंसी रहेगी, ये कभी नहीं भूल सकते। जैसे एक सुअर भी अपने बच्चे को प्यार करती है, यदि सुकरी को कहीं ले जाना है सुकर के बच्चे को गोदी में उठा करके इधर चलो देखो उसके पीछे पीछे बच्चे, गैया अपने बच्चे को प्यार करती कितनी प्यार करती है, स्कूल कॉलेज में नहीं गई, प्रेम का पाठ उसने कहीं नहीं पढ़ा, जन्म से ही अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम है, उमड़ता हुआ प्रेम, उसके लिए अपने जान को दे देगी, कैसा प्रेम, ये प्रेम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, ये प्रेम पढ़ने से नहीं, ये हमारी इसमें निश्चित रूप से ये है, किसी न किसी रूप में ये प्रेम है, पति के प्रेम को शुद्ध करना है, स्त्री के प्रति जैसा प्रेम है पति के प्रति जैसा प्रेम है, और ये प्रेम नहीं ये काम है, स्वार्थ है। गाय को हम लोग आदर करते हैं, इसलिए गाय को नहीं, गाय यदि दूध नहीं देती और बच्चे नहीं देती तो गाय को हम पालन नहीं करेंगे। आम का पेड़ लगाते हैं, बबूल का पेड़ नहीं लगाते, इसलिए आम से सुंदर सुंदर मीठे फल मिलेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं, इसलिए आम के रक्षा के लिए हम उसे पानी देते हैं, ऐसा नहीं, उससे हमारा स्वास्थ्य निकलता है, इसलिए यह स्वार्थ प्रेम का ही विकृत स्वरूप है। जब इसी जगत का ये जो काम है स्वार्थ है, इसको सबको एकत्र करके शुद्ध करके और कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे तो ये विकृत प्रेम, आत्मा का आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति जो भाव होता है प्रेम होता है, यही यथार्थ प्रेम है। अभी हम लोग सभी स्वार्थ में हैं, किसी न किसी में जरूर स्वार्थ रहेगा जब तक ये शरीर को मैं समझता हूँ कि मैं हूँ। किसी को कहते हैं शरीर में आत्मभाव, इसको छोड़ना होगा। इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है। गीता पढ़े बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कल उसी के संबंध में हमने बताया, आज हम श्रीमद् भागवतीय प्रेम के संबंध में हम कुछ दो एक एक लोगों की नजर चाहते हैं। कृष्ण जी रास किया, रास मैंने रस शब्द से, ये रास मैंने क्या इस चीज को समझने के लिए थोड़े से दार्शनिक पहल मैं कुछ बतलाऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो दुख चाहता है। किंतु सुख पाने के लिए जो तरीका जो ग्रहण करता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई मदिरा पान करने में सुख समझता है, कोई अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति या तीसरी स्त्री को प्रेम करता है, इसमें सुख मानते हैं। कोई मांस खाने में सुख समझता है, किंतु सुख किसमें है? सब प्रकार ने बारीक बहुत गवेषणा करके विचार करके बताया, बिना हरि भजन के सुख नहीं यथा शांति नहीं मिलेगी। श्रुति सिद्धांत यह गुरुदारी भजिय राम सबकाज विचारी, भजिय राम सबकाज विचारी सर 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 शब्द है। भजिय राम सबकाज किंतु हम लोग आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास कपास, अब कपड़े बनेंगे कपास बुनो, फिर बुलाई होगी रुई आएगी, तकलीफे काटो काट करके पत्र बनाओ पहनेंगे। इसलिए आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे हम आत्मज्ञान ला करके इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन करके अपने जो अपना जो होम है अपना जो घर है वहां जाने के। सब हम लोग रीति भी आए हैं दो दिन के लिए, बस इसी को बनाने में लग गए और दो दिन के बाद में अरे हमारा ये किराया समाप्त हुआ चलना है, सब बना बनाई यहीं पर रह जाएगा, उसके लिए हमने कोई चिंता नहीं किया। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का धर्म है प्रेम। अभी प्रेम बिखरा हुआ ये काम और स्वार्थ है, यही शुद्ध होने पर भगवान के प्रति लगने पर इसको कहते हैं प्रेम। श्रीमद् भागवत इसी प्रेम को अपना उद्देश्य और ऑब्जेक्ट मान करके उसी की तरफ में ये बढ़ाता। कृष्ण ने बंसी बजाई कल बताया, उसमें गोपियों को घर लौटाने की बहुत देर है। गोपियों ने कृष्ण को एक तरह से बसी खुल करके उनकी बातों को काट कर कृष्ण के साथ में रही। कृष्ण ने युक्ति के द्वारा यज्ञ पत्नियों को ब्राह्मण मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों को तो लौटा दिया घर में, किंतु इन गोप कुमारियों को लौट आ नहीं सके। सरस कहते हैं रस ही आराम है, कैसे? एक चीनी गुरु का रस है, उसे चीनी का सरबत अच्छा है, उसमें नींबू और केवड़ा इत्यादि लगा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। उससे जो परस्पर जो प्रेम करते हैं या हम टीवी इत्यादि में कृष्ण की लीला या कोई चीज देख रहे हैं उसमें खाना पीना भी भूल जाएगा, उसमें एक रस है, ये मन का रस है। उस मन के रस से भी आत्मा का रस जो है भगवान के साथ में भगवान की सेवा करना उनके साथ में क्रियाएं करना ये और बड़ा साइंस है। कृष्ण ने जब अंतर ध्यान होने के बाद में गोपियों के गीत गोपी गीत से एकदम सहसा उनके सामने में प्रकट हो गए। जब कैसे प्रकट हुए? मनमत मनमथ मनमत को ताकाम आत्मभूत सौरी मैं नाम मुखान पूजा पीताम सत्थात मनमत मनमथ सौरी मैंने वसुदेव जी के पुत्र क्यों कहा? व्यास जी को जरा सुखदेव को जरा रोष हो गया। मैंने कहा कि जसोदा नंदन या नंदनंदन है, ये तो सौर पुत्र है, नहीं तो इसका हृदय इतना कठोर नहीं होता जिन गोपियों को छोड़ करके अंदर ध्यान हो जाता। अब वो मनमत रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। गोपियों ने अपने दुपट्टे सर एकत्र करके एक एक जातीय गोपियां एक एक उनके लिए गद्दी से तैयार की, अपने कुमकुम लगे हुए वस्त्रों को ओढ़नी वस्त्र को बैठक लगा। कृष्ण वहां पर कुछ लज्जित हुए और लज्जित होते हुए मुस्कुराते हुए जरा आंखों को नीचे करते हुए वहां पर बैठे। किसलिए? कुछ लज्जित हुए और हमने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, तुमने हमारे लिए स्त्री अपने पति पुत्र घर बार देह दाय सब कुछ छोड़ दिया और मैं तुम्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए लज्जित हुए और वही वर्णमाला जो गोपियां ने पहनाई थी उसको पहने वहां पर बैठे। कुछ गोपियां उनके पैरों को अपनी गोदी में ले ली और उनके तरफ में देख रहे, कुछ गोपियां उनके दाहिने हाथ को अपने कंधे पर ले, एक ने बाया हाथ को और उनके तरफ में देख रहे। एक गोपी जरा दूर होकर के सुख से और अपने कटाक्षों से रोष भरे नेत्रों से उनके तरफ में देख रहे, यही उचित था। इसमें इसका कारण इनके नाम उचित सबक था। जो दूर से रोष भरी उनके तरफ में देख रही वो कौन है? श्रीमती राधिका जी। जो उनके चरणों को अपने गोदी में लिए हुए ये दाक्षिण्य भाव वाली चंद्रावली इत्यादि उनकी सखियां। एक भद्रा जी है उनके चबाए हुए बाल को ग्रहण कर रही, ये सूर्य है राधा जी की विपक्ष वाली के ये तटस्था है। कोई सूर्य पक्षों की वो श्यामला इत्यादि की है वो भी जरा रोष से है उनके तरफ में देख रहे हैं किंतु निकट आई हुई। इसके बाद में गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, एक प्रश्न एक पहेली मुझे नहीं आया आपको। पहेली क्या? पहेली ये, कोई प्रेम करता है तो कोई उसे प्रेम करता है, कोई लाख प्रेम करे वो प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है। पहला ये, कोई प्रेम करने पर उसे प्रेम करता है या करती है, अब कोई इसे प्रेम नहीं करने पर भी उसे प्रेम करता है या करती है, और कोई प्रेम करो न करो वो किसी को प्रेम नहीं करता। पूछती है बड़ी भाव के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ, प्रभो आप इसमें से कौन से हैं जरा बतलाइए। तो परीक्षा कृष्ण के मुख से, कृष्ण के ही तर्कों को युक्तियों को हटा करके कृष्ण को से ये कहना चाहती हैं कि हमने अन्याय किया, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं किया, ये कहना चाहती हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं या करती हैं वो बनिए हैं। कोई दुकान लगा करके कोई पैसा देता है उनको उतना चीज दे देते हैं माफ कर, वो तो अच्छे जमनिया हुए वो, नहीं तो तराजू घटिया रहती है तो उसमें कुछ मारिया डंडी और अच्छे चीज का नमूना देखा करके घटिया बावजूद उसमें चला देते हैं, ऐसे बनिए हैं। इसलिए इसमें प्रेम नहीं है, सौहृद भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये शुभ केवल बनिया के लिए। इसलिए कृष्ण से कोई प्रेम करता हुआ कृष्ण से कोई चीज मांगे और उसकी सारी अभिलाषाएं कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कामना वासना डिजायर हो तो ये बनिया के लिए। इसमें धर्म नहीं है, इसमें कोई भी सौहृद नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सीधा नहीं है। और जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं इसमें धर्म भी है, इसमें सौहृद भी है, दयालुता भी है। ये कौन? माता पिता और गुरु। बेटा बेटी यदि माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं तभी माता पिता अपने पुत्र की कोई भी विपत्ति इत्यादि को नहीं देख सकते, लाख को नहीं माने तभी पाप और मैया के पुत्र का कल्याण कल्याण हो। कुछ हो गया सब कुछ उसने दिया, बंदूक भी ताना, और थोड़ी देर के बाद जाने मैया, जहाँ मैया कहाँ बस सब सात कुंभ। इसलिए इसमें धर्म स्थापित पक्षांतर के रूप में कृष्ण ने ये बताया कि गोपियां ये तुम हो, मैं प्रेम करूं और न करूं, तुम बिना प्रेम किए हुए हम चेहरा नहीं करती, इसलिए तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति है ये आदर है, किंतु मुझसे नहीं बताया कि तुम। और तीसरा कौन? तीसरा वो जो प्रेम कोई करे और न करे वो किसी से प्रेम नहीं करता। अब इसको चार भागों में भी भक्त कर दो, ये विभिन्न प्रकार के इस पर प्रेम का बतला रहा हूं। इसलिए पहले वाला प्रेम प्रेम नहीं है, संसार में 99% ऐसा ही प्रेम करते हैं बनियागिरी, इसलिए वो प्रेम नहीं है, घटिया किस्म का प्रेम, वो बिजनेस। और कुछ उसमें थोड़े से रह जाते हैं, कृष्ण अपना प्रेम प्रकाश करें ना करें किंतु वो प्रेम करना कृष्ण नहीं छोड़ता, या प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। हम लोगों को ऐसे ही कृष्ण के प्रति करना चाहिए, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान समाजनाप्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। पर कृष्ण को सुख देखेंगे, उसमें अपने सुख दुख को वो साधक नहीं देखता है। तीसरे को बताया, देखो जो प्रेम करे और न करे वो किसी को प्रेम नहीं करता, वो कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने आत्मनिर्भर करने वाला, उसको शरीर की सुख बुद्धि से सनत कुमार, सनत कुमार सुखदेव गोस्वामी जी आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऋण के रहते हैं, इनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं जगत से, इसलिए उनको तुम कपड़ा धोती रुपया पैसा सोने का हाथ दे दो तभी उनको क्या मतलब, और यदि कुछ भी ना करो तभी क्या मतलब, ऐसे लोग नहीं करते। और दूसरे कौन? आत्माराम आप सकाम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी है, किसी चीज की कामना ही नहीं है, उसको किसी से क्या मतलब, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसे क्या मतलब, कुछ भी मतलब। ये आप सकाम कृष्ण कहते हैं, देखो इन दोनों में से मैं किंतु ऐसा नहीं, क्यों नहीं हूं? यदि आत्मारमण में होता, आत्मनिर्मण करने का बात, तो बल्कि बजा करके तुमको कैसे बुलाता, इसलिए मैं आत्माराम है, आत्माराम के गुरु के गुरु के गुरु हैं, किंतु कृष्ण दिखला रहे हैं भक्तों के प्रेम को पाने के लिए मचलते हैं, यशोदा जी का दूध गोपियों का मक्खन खाने के लिए मचल करके उनके घरों में चोरी करते हैं, तो आपका काम कहा? यशोदा जी उनको गोदी से उठा करके बैठा गई और दूध को बचाने के लिए गई, और कृष्ण ने क्रोधित होकर के खंड तोड़ दी, कभी मैं कहा आत्माराम, मुझको तो क्रोध भी आया, इसे मैं आत्माराम नहीं, और आत्मकाम मेरी कामना ही यदि पूर्ण हो गई तो राज क्यों करता तुम लोगों के साथ में, तुम्हारे पैर क्यों दबाता, तुम्हारे श्वेत बिंदुओं को किस लिए पूछता, इसलिए आत्मकाम भी नहीं हूं। जहां यशोदा जी का स्नेह देखा उनको बड़ी भूख लग जाती है, भक्तों का यदि देखा केले का छिलका बिजरानी के घर में देखा बड़ी जोर से भूख लग जाती है, दुर्योधन के घर में निवास त्याग दिया और इनके घर में बिजरानी के घर में जब गए तो इनको बड़ी जोर से भूख लगी, इनको आत्माराम के भी आत्मकाम के भी आत्मकाम उनको बड़ी भूख लगी, और बिजरानी ने प्रेम में पककर हिदर का साथ फेंकने लगी होश नहीं और छिलके लिए, और उसको ऐसे खा रहे हैं प्रेम के साथ में, आज द्वारका से अभी तक भूखे ही चल रहे हैं, बड़ी जोर से भूख लगी, प्रेम का स्वादन करते हैं, प्रेम के लिए उसको भूख हो जाती है, भक्तों का भाव देते ही उनको उस भाव का स्वादन करने की लालसा जब उठती है वो अपने को भी रोज रोक सकते, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं आत्माराम और आत्मकाम होता फिर रात करके तुमको क्यों बुलाता, फिर तुम्हारे पैर को मैंने दबाया और तुम्हारे श्रृंगार को मैंने ठीक किया, जो गोपी आई थी एक केवल एक आंख में पूछा कृष्ण ने, एक ही आंख में तुम अंजन लगाई दूसरे आंख में नहीं लगाई, उसको बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसको बैठा करके धीरे से काजल निकाल करके उसके दूसरों आंखों में भी काजल लगाई, ये आत्मकाम का ये लक्षण है ना, आत्माराम का लक्षण है, मैं दोनों में देख। फिर तीसरा जो गुरु द्रोही होते हैं वो कोई प्रेम करे और ना करे वो गुरु द्रोही हो जाता है। गुरुद्रोही भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा गुरुद्रोही होता है किसी कारण से अपने माता पिता से विरोध करता है और कोई अकारण ही माता पिता से विरोध कर देते हैं। इसमें दूसरे वाले जो है अकारण ही जो द्रोह करते हैं वो तो भयंकर महाअपराधी है, वो गुरुद्रोही है। माता पिता का सभी द्रोही है। माता पिता का और गुरु का ऋण चुकाना बड़ा भारी कठिन है। जो माता पिता की और गुरु की सेवा छोड़ देते हैं मरने के बाद में उनके अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। उसको स्वर्ग जाने के बाद भी यदि किसी कारण से स्वर्ग हुआ वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ आकर के अपना शरीर पड़ा रहेगा, उसी का मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा दिया गया है। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने संक्षेप किया। इनका ऋण कभी दूर नहीं, इनका ऋण एक तरह से ही दूर होगा यदि कृष्ण का किसी ने भजन किया। तो कृष्ण का सभी ऋण है उस महाऋण से, माता का ऋण, पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, सभी ऋण भगवान का भजन करने से हो जाता है। इसीलिए कहा सर्वधर्मान प्रत्यक्ष माम एक महाराष्ट्र शोक मत करो, मैं सबका ऋण मिला दूंगा, तुमको कोई भी क्लेश नहीं होगा, कोई भी पाप नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि वो गुरु द्रोही जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, अर्थात माता पिता स्नेह करते हैं, गुरुजन स्नेह करते हैं, किंतु ये गुरु द्रोही ये नहीं करते। और उसमें भी एक अकारण पिताजी वृद्ध हो गए, मैया वृद्ध हो गए, कहते हैं मर नहीं जाता, खांसते खांसते एकदम तबाह कर दिया, ये अकारण। और सकारण क्या है, उन्होंने बड़े बेटे को उसने सब कुछ लिख दिया, छोटे बच्चे ऐसे रह गए, ताकि तुमने सब कुछ उसको दे दिया, अच्छा था ये सकारण। किंतु दोनों में कोई नहीं होना चाहिए। सकारण क्या, पत्नी ने कहा जब इससे हमारी नहीं बनेगी अब हम लोग अलग हो जाए, बहुत समझाया नहीं माने, अच्छा भाई चल सब हम वहां से आकर के पिताजी की कोई सेवा करें, ये सकारण। किंतु है गुरुद्रोहिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ माने क्या, किए हुए भलाई को नहीं मानने वाला अकृतज्ञ है। हम लोग को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए किसी का। माता पिता ने गुरुजनों ने कितनी हमारी सेवा की, एक गाय के लिए हम कृतज्ञ हैं क्योंकि दूध देती है, वो मैया है और उसी का मांस हम खाएंगे, वो माता है। इसलिए अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अकृतज्ञ प्रेम करने पर भी नहीं करते हैं वो महास्वार्थी जघन्य स्वार्थी होते हैं। इसलिए इसमें प्रेम का स्तर दिखलाया गया, जितना स्वार्थ अधिक है, कोई संसारिक लाभ इत्यादि की पूजा और संसारी कोई भी स्वार्थ का कारण है, प्रेम दब जाता है। कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियों, इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, आप क्या हैं, वो क्या ये चाहती थी ये अकृतज्ञ के रूप में कुछ हो। उसे भी कृष्ण साफ दाव बचा करके निकले, तो आप कौन है, कहते हैं देखो मैं इनमें से कोई नहीं, मैं तो अंतरहित होगा, इसलिए जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति है और हनो एक गरीब व्यक्ति और उसको कोई विशेष धन मिला, चिंता नहीं मिल गई, पांच पत्थर मिल गया, उसके लिए वो सुरक्षित रख रहा है, थोड़ी देर के बाद किसी ने उसको ले लिया चोरी कर, अब चोरी कर लिया कहा है कर, हाँ है तो एक पत्थर गुम हो गया, किसी ने कहा कि पत्थर नहीं होता, चिंता नहीं और भी चिंतित हो गया। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा यह प्रेम बढ़ाने के लिए मैं अंदर में कहीं गया था, दूर नहीं गया था, मैं तो झाड़ियों के अंतराल में रह करके तुम्हारी प्रेममयी बातों को मैं सुन रहा था और जगत को ये जानना चाहता था कि तुम्हारा हमारे प्रति कितना प्यार और प्रेम है। जगत बाकी लोग पीछ सके लोग सब ठीक है और समझे और सुने जब विरह में तुम लोगों की क्या अवस्था होती है इस चीज को दिखलाने के लिए और मैं उसे स्वयं आस्वादन करने के लिए मैं सीखता गया था। इसलिए देवियों तुम लोग हमारे प्रति प्रेम मत करना, तुम्हारे लिए भी किया था ये तुम्हारा यह जो प्रेम है पुत्रोत्तर बढ़ता चले इसे ये सीख गया था। न कहते हैं न पारे हम निर्वस्थित हैं, देवियों तुम्हारा ऐसा ऋण है कि मैं तुम्हारा चीज ऋणी हूं, देवताओं जैसी लंबी कोटि कोटि वर्षों की आयु पा करके भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण कहते हैं जिसके बदले तुम लोग कुछ मांग लो। कृष्ण कहते हैं यदि मैं कहूंगा तुम मांगो इसमें, जैसे कि सूर्य को राज्य दे दिया 36,000 संस्कार, जो कोई जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं, कोई मुक्ति मांगता है उसको भी सभी दे देता हूँ, यदि कोई बैकुंठ चाहता है उसको बैकुंठ की गति दे देता हूँ, सबको माता पिता तक उनके प्रेम का बदला वो दे देते हैं, जो कुछ मांगता है उसे दे देते हैं। देवियों मैं तुम्हारे यहां मैं हार गया, तुमको अपने बदले में कुछ ऋण को ऋण नहीं सका। क्यों? तुम मांगोगी, यदि कहूं जब मांगो तो तुम यही मांगोगेगी कि आप अपनी सेवा दीजिए, यदि सेवा कर देंगे फिर वो ऋण बन जाएंगे। इसलिए हे देवियों तुम अपने गुण से और स्वभाव से ही आप ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा ऋण रहूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं दूंगा। गोपियों ने कहा यह आप हार करके भी जीते, क्यों? आप प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। इसी शब्दों से आपने हमें खरीद लिया, हम आपकी बची भूत हैं, सचमुच में हमारा ऋण नहीं, ये आपका ऋण है। ये परब्रह्म होते हुए भी मन से तो नहीं कार्य करते किंतु भाव यही, इतने बड़े होकर के भी और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम का ऋणी हूं, मैं हम लोग आपकी यथार्थ ऋणी हैं। ऐसा ये प्रेम दोनों का, यह प्रेम कुछ संसारी या और कोई वासना में नहीं होता, विशुद्ध यह प्रेम होता है। इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। अब हम चलें रात के अंतर ध्यान होने के बाद में कृष्ण आ गए मथुरा में, अक्रूर उनको ले आए। फिर कृष्ण नहीं गए वृंदावन में, ब्रज में नहीं गए, दोनों में दूर कितनी है? दो अंगुल भी नहीं। ये दो अंगुल माने क्या? यहाँ पर दो अंगुल मिलती है ना, तो वहां का बॉर्डर यहाँ का बॉर्डर तो मथुरा और ब्रज का तो मिलता जरूर होगा, वहां पर कितनी दूरी होगी डिस्टेंस? एक डिमार्केशन लाइन के बाद दोनों में कोई दूरी नहीं, किंतु बहुत दूरी है भाव राज्य की। एक ऐश्वर्य भूमि है और एक मार्ग भूमि, दोनों के विपरीत भाव है। एक तरफ में भगवत्ता प्रधान और एक तरफ में हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे सखा भाव हैं, ये भाव बहुत दूरी। और कृष्ण आए हैं मथुरा में कंस को मारा, कंस के मारने के बाद में लोगों ने ये बतलाना आरंभ किया कि आप देवकी पुत्र हैं, वसुदेव पुत्र हैं, आप क्षत्रिय हैं। कुछ दिनों के बाद में नंद बाबा को भेज दिया, दो दिन के बाद नंद लौट गए। कृष्ण ने उनके हाथों से कुछ आभूषण और वस्त्र भेज दिए मैया के लिए और वो लेकर के वहां पर वस्त्र नहीं दिया। मैं तो गोपियां कहती कि तुमने कृष्ण को भेजा है रुपये पैसे आभूषण में, इसलिए तो चोर की तरफ में पीछे के दरवाजे से घुसे और जसोदा जी को कभी नहीं मुक्त दिया दिखलाया, ब्रजवासियों के सामने नहीं आते थे। कुछ दिनों के बाद में लोगों ने कहा भाई इसका उपनयन करा दो, नहीं तो ये फिर वृंदावन में लौट जाएगा, और जब जिसमें उपनयन होगा खबर का कोई ब्रजवासी ना आएगा। नंद बाबा या जो पता किसी को निमंत्रण मत दो, और सब जितने भारतवर्ती या बाहर में जितने हमारे कुटुंब वाले हैं सबको बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया, किंतु दो अंग के फैसले पर मथुरा से पार्टी में वृंदावन उनको नहीं बुलाया, वो लोग नहीं आए। उपनयन हो रहा छोटे से कृष्ण भी अभी 10-10.5 वर्ष की, बलदेव जी दोनों का मंडन हुआ, खड़ा दिए गए, एक लड़किया दी गई दंडक और पीले रंग के कपड़े उनको पहना, अद्भुत सौंदर्य उसने से प्रकाशित हुआ, कानों में कुंडल उसने। जब दीक्षा सब हो गए थे जग पवित्र हो गया, जग पवित्र हो गया उस समय में गुरु जी ने गर्गाचार्य जी ने कहा बेटा अब तुम दीक्षा मांग करके ले आओ, माताओं से कहना कि माता जी दीक्षा दे, और पिताओं से क्या कहना पिताजी दीक्षा दे। कृष्ण की वो पीले रंग की वो ओढ़नी को उन्होंने बना दिया डोरी और उसके गले में ऐसे डाल दिया, जाओ सबसे भिक्षा मांगो। कृष्ण के उस समय में चिंतन में आया, भाव आया, हमारी मैया ने कहा था जिस समय तुम्हारा उपनयन होगा उस समय तुम्हारी बोली को खीर और मोतियों से भर दूंगी। कौन सी मैया? यशोदा को मैया कहते हैं। यहाँ तो मक्खन और रोटी भी भूख लगती है तो रोहिणी ये देती है जो तो उनको मैया नहीं कहते, मैया कहने में लग जाती है। वो कहते हैं बेटा कुछ खा लो, नहीं भूख नहीं, और रोहिणी जी आकर के अपने हाथों से उनको खिला देंगे क्योंकि अभ्यास है व्रत का। इसलिए वो चिंतन करने लगे, मैया ने कहा था तुम्हारी बोली बिली और मोती मुझे भर दूंगी। आज मैया कहाँ खुद है और वो हाथों में सोने के थाल में हीरे जप और रत्न इत्यादि लेकर के देवती की खड़ी है कि हमारे पास में तो पहले भी क्या सामने के लिए आएगा, एकदम तैयार। और कृष्ण उधर देख नहीं रहे हैं, उन्हें जरी कहाँ देख रहे हैं, मैया मैया कहाँ है, और ऐसे उनके मुख से मैया और मैया और गिर पड़े, आंखों से आंख उतर पकड़ और बेहोश होकर मैया करते। इतना ये अभी यशोदा जी के प्रति प्रेम है, ये लोग बुलाना चाहते हैं कि अब छत्री बन जाए, छत्री का उपनयन होता है इसे आज से अपने को जादव समझे, कृष्ण को वो मंजूर नहीं। ये कहते हैं वसुदेव और देवकी के पुत्र अब ऊपर से ग्रहण करने हैं क्योंकि यही तो भक्त है, इसे इसी मनु बाध्या करने के लिए कर रहे हैं। प्रेम गोपियां करती हैं, प्रश्न करते हैं अरे, किंतु इसे जगत के सभी भक्तों को छोड़ देंगे ऐसा नहीं हो सकता, किसके आश्रय रहने रहेंगे, इसलिए यदि द्रौपदी पुकार रही है उसको दे दी जाए। आप लोग पुकारते हैं जब कृष्ण करते हैं तो आपके लोगों के विवाद, इसलिए वो सबके हैं, इसलिए मथुरा भी उनको आना है, द्वारका भी जाना है, पांडवों के लिए महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करना है और धार्मिकों का संहार भी करना है, बहुत से उनके कर्तव्य हैं। इसलिए प्रेम की बोली मत में है, तथापि यहाँ पर तो आना पड़ेगा ही, इसलिए कृष्ण यहाँ पर रहे। कुछ दिनों के बाद में गुरुकुल में गए और वहां से लौटे और यमुना के किनारे मथुरा में तक करके बहती है सुंदर से यमुना, उसी के ऊपर में बक्से महाराज की विराट अट्टालिका थी, कंस का राजमहल अब कृष्ण के ही उसके मालिक है। उग्रसेन को उन्होंने राजा बना दिया, अपने राजा नहीं हुए, उनको इस छोटे से राज्य से क्या जरूरत है, वो तो भूमंडल के राजाओं के राजा हैं वो, इसलिए राजा नहीं दिया। अब वही कृष्ण ऊपर में बैठे हुए, उन्होंने उत्तर की तरफ में देखा, देख रहे हैं वो ब्रज हंस हो रहा है, गायें चरती नहीं, बछड़े दूध नहीं पीते, जब से मैं आया सारी प्रकृति एकदम उदास हो गई है, बच्चे खेलते नहीं, गाय चरते नहीं, मयूर नाचते नहीं, कोयल कुहू कुहू अब नहीं करती, फूल समय पर जो पहले जो विकसित होते थे अब नहीं होते। इस तरह से कृष्ण देख करके भाव नेत्र से देखने हमारे पिताजी और माता जी हमारे गृह में बड़े सुखी हैं। अंत में गोपियों के लिए कहते हैं, गीता में ये बतलाया गया है, अंतिम सर्व भूय तमम भूय क्षण में परमाम बचा, अंतिम उपदेश में क्या उपदेश, आत्मज्ञान ये भूय ज्ञान है, इससे भी ऊपर और ये भूयता ज्ञान है, उससे भी ऊपर भूय तम ज्ञान और सर्व भूयतम ज्ञान है गीता का उपदेश मनमना भाव। मनमना भाव मैने क्या, कृष्ण यहीं पर ये चीज को दिखला रहे हैं, वो क्या कहती है, मतलब चित्ता सब कुछ अपना तय देहज और सर्वधर्मान जो गीता में लिखा गया है उसकी मूर्ति है। कैसे सर्वधर्मान प्रत्यय होता है, गीता ने इसका दृष्टांत नहीं दिया, इसका दृष्टांत एकमात्र गोपियां सर्वधर्मान प्रत्यय, यशोदा जी सब धर्मों को नहीं छोड़ सकती, नंद बाबा को नहीं छोड़ा, नंद बाबा को नहीं छोड़ करके भी कृष्ण को स्नेह किया, किंतु गोपियों ने क्या किया, पति पुत्र है तो पुत्र देव दैनिक सब कुछ छोड़े, सखा लोग भी अपने माता पिता को छोड़ करके कृष्ण के पास में नहीं आते थे, उनके भी माता पिता हैं, किंतु गोपियों ने अपना गृह अपना घर अपना शरीर, अपना पति, अपने सब कुछ जो कुछ था सारा, यहाँ तक कि बड़ा संधर्म, यहाँ तक कि लज्जा को भी छोड़ दिया। उद्धव जी से कृष्ण कह रहे हैं हाथों में, उद्धव जी उनको खुलते खुलते कृष्ण कहाँ गए गए, ऊपर में देखा तालिका रूप में कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कुछ अनमनी से हो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, अरे भैया ये क्या, तुम किसके लिए इतना मन खराब करो, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि उद्धव ब्रज विषय बताना है, मैं ब्रज को भूल नहीं था, मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं मेरे लिए, तुम जाओ उनको कुछ सांत्वना दो। और गोपियां प्रेम की मूर्ति है, हमारे बिना एक क्षण भी नहीं जा सकती। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विरह में तड़पड़ा रही हैं, आप उनको जा करके कुछ सांत्वना देना, मैं कुछ संदेश दूंगा लेकर के। इसमें उन्होंने कहा गोपियां मनमना भाव है, कैसे मनमना भाव है उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, लाखों बछड़े और बछड़ियां पूजा कर रहे हैं। चलते चलते कृष्ण ने देखा एक घर के दरवाजे में एक कोई नव विवाहिता इंद्रप्रस्थ से अभी आई है, नंदगांव अभी नई दुल्ही, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बच्चों को लेकर के सखाओं के साथ में जब वन में चल रहे हैं प्रस्थान करने की दिशा में, वो दौड़ी हुई जाने लगी कृष्ण का दर्शन करने। चारों तरफ में हो हल्ला हो गया, कृष्ण बनने जा रहे हैं, सभी लोग दूर जहां से